पृष्ठ संख्या 237 मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में संपूर्ण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग को सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठारी है। विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर पश्चिम से पूर्व दिशा में मध्य प्रदेश के बीच में स्थित हैं। अधिकांश क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। भूतात्विक बनावट की दृष्टि से पश्चिम तथा दक्षिण का भाग दक्कन के लावा के जमाव से निर्मित है। उत्तर पश्चिम में ग्रेनाइट का आधारभूत भूतात्विक जमाव दृष्टिगोचर होता है। मध्य एवं उत्तर पूर्व के क्षेत्र विंध्य के बलुआ पत्थर से निर्मित है। नर्मदा तथा ताप्ती ही ऐसी दो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इनके विस्तृत मैदान हैं जिनमें जलोढ़ मिट्टी का मोटा जमाव मिलता है। उत्तर में मालवा तथा दक्षिण में दक्कन का मुख्य पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत की श्रेणियां हैं। विंध्याचल के पठार से चंबल, बेतवा, केन आदि नदियां निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई यमुना में मिल जाती हैं। दक्षिणी पठारी भाग के उत्तरी हिस्से में महादेव मैकाल की पर्वत श्रेणियां हैं जो उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार से मिल जाती हैं। सोन नदी अमरकंटक के पास से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई पटना के पहले गंगा में मिलती हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी तथा उसकी सहायक नदियां सींचती हैं। मध्य प्रदेश में पर्याप्त वर्षा होती है जिसका वार्षिक औसत पश्चिम में 800 मिमी है जो पूर्व में बढ़कर 2000 मिमी तक हो जाता है। मध्य प्रदेश के जंगलों में खाने योग्य अनेक प्रकार की वनस्पतियां एवं फल आदि मिलते हैं। उपकरण बनाने योग्य विविध प्रकार के शिलाखंड सहज प्राप्य हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग को प्रायः दो सांस्कृतिक नामों से जाना जाता है। पश्चिमी क्षेत्र बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है तथा पूर्वी भाग कैमूर कहलाता है। उत्तर प्रदेश के पठारी भाग की भूमि कंकरीली पथरीली है। केन, बागई, पयस्विनी, ओहन, टोंस, वेलन, चंद्रप्रभा तथा सोन आदि प्रमुख नदियां हैं। इस भाग में वर्षा बहुत अनिश्चित है। पुरापाषाण काल के पुरावशेषों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में से केवल पठारी भाग ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के प्रायः अधिकांश जिलों में से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीहोर, जबलपुर, खंडवा, पूर्वी निमाण, खरगोन, पश्चिमी निमाण, इंदौर, सागर, दमोह, मंदसौर, रतलाम, रायसेन, भोपाल, ग्वालियर, टिकमगढ़, गुना, दतिया, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल आदि इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद का दक्षिणी पठार, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, बांदा, झांसी पृष्ठ संख्या 238 तथा ललितपुर में पुरापाषाण काल के संबंध में अनुसंधान हुए हैं जिनके परिणाम स्वरूप पुरापाषाण काल के पुरावशेष इन जनपदों से मिले हैं। मध्य क्षेत्र में निम्न पुरापाषाण काल के पुरास्थल तीन प्रकार की स्थितियों में मिलते हैं। एक, खुले स्थानों पर स्थित पुरास्थल ओपन एयर साइट्स। दो, गुफाएं एवं शिलाश्रय। तीन, नदियों के अनुभागों के जलोढ़ मिट्टी के जमाव। खुले स्थानों पर स्थित पुरास्थलों का अध्ययन बेलन तथा सोन नदियों की घाटियों मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर तथा रायसेन नामक स्थान पर किया गया है। इस श्रेणी के पुरास्थल पहाड़ियों के ऊपर उनकी तलहटी में तथा समतल पठारी मैदान में प्रायः स्थित मिलते हैं जहाँ पर समीप में ही नदी अथवा झरने के रूप में पेयजल का साधन सभी ऋतुओं में सुलभ था। बने, अधबने तथा टूटे हुए उपकरण एवं उपकरण निर्माण में प्रयुक्त सामग्री प्रायः ऊपरी सतह पर भी अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में मिलती है अथवा मिट्टी के नीचे दबी हुई मिलती है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर नामक खुले स्थान पर स्थित पुरास्थल का उत्खनन सन 1987, 1988 तथा 1991 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कराया गया है। उत्खनन के लिए चयन चयन किया गया। पुरास्थल मैहर कस्बे में शारदा देवी जाने वाली सड़क के बाई ओर तथा शारदा देवी की पहाड़ी के ठीक नीचे पूर्व दिशा में स्थित है। इस पुरातत्व की खोज जे एन पांडे ने सन 1975 में किया था। इसके बाद इसकी सतह पर पड़े हुए पुरावशेषों का सघन रूप से अन्वेषण किया गया। ऊपरी तल पर पूर्ण निर्मित, अर्ध निर्मित एवं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रेपर आदि बिखरे हुए मिले हैं, जिनमें यह इंगित होता है कि यह संभवतः प्राथमिक एश्युलन पुरास्थल है। ऊपरी तल में प्राप्य साक्ष्यों की पुष्टि तथा एश्युलन पुरास्थल मानव के कार्यस्थल के सन्निवेश के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उत्खनन किया गया। लगभग 216 वर्ग मीटर क्षेत्र में सीमित पैमाने पर किए गए उत्खनन के फलस्वरूप 1.12 मीटर मोटा जमाव प्राप्त हुआ, जिसे तीन प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रथम स्तर 22 से 25 सेमी मोटा लाल रंग का जमाव है, जिसमें लौह तत्व युक्त कंकड़ शेल के टुकड़े हैं। इसमें चर्ट पर बने हुए ब्लेड के टुकड़े मिले हैं। दूसरा स्तर 30 से 46 सेमी मोटा पीले रंग का जमाव है, जिसमें भी प्रथम स्तर की तरह की ही वस्तुएं जैसे लौह तत्व युक्त कंकड़ एवं शेल के टुकड़े मिले हैं। इस स्तर से उपकरण नहीं मिले हैं, किंतु इस स्तर के नीचे के जमाव से निम्न पुरापाषाणिक उपकरण स्वस्थान इन सीटू मिले हैं। तीसरा स्तर 13 से 26 सेमी मोटा चितकबरी मिट्टी मोटल्ड क्लैप का जमाव है। जिसमें सेल के टुकड़े तथा क्वार्जाइट एवं बलुआ पत्थर के टुकड़े मिले हैं। इसमें निम्न पुरापाषाण काल के हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रेपर, चॉपर, पेबल पर बने हुए उपकरण एवं चक्राब, पृष्ठ संख्या 239, उपकरण स्फेरॉइड, क्रोड एवं फलक आदि प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त उपकरणों के निर्माण में प्रयुक्त किए गए पाषाण के हथौड़े, निहाई, एनविल आदि अन्य पुरावशेष भी मिले हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के प्राथमिक अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के उपकरणों में हैंड एक्स की तुलना में क्लीवर अधिक है। अधिकांश उपकरण नवनिर्मित से लगते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीम बैठका नामक पुरास्थल का क्षेत्र गुफाओं एवं शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी संख्या यहाँ पर लगभग 500 है। भोपाल से लगभग 50 किमी दक्षिण में यह पुरास्थल स्थित है। भीम बैठका की पहाड़ियों पर स्थित गुफाओं तथा शिलाश्रयों को सन 1958 में खोजने का श्रेय विक्रम विश्वविद्यालय के B.S. वाकड़कर को है। भीम बैठका के अधिकांश शिलाश्रयों में मध्य पाषाणिक संस्कृति के पुरावशेष तथा समकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। अभी तक केवल 4 शिलाश्रयों थर्ड F23, थर्ड F25, थर्ड F29 तथा थर्ड F30196 से निम्न पुरापाषाण काल की एश्युलन परंपरा के उपकरण मिले हैं। भीम बैठका स्थित एक शिलाश्रय का सन 1972 में B.S. वाकड़कर ने उत्खनन कराया, जिसके परिणाम स्वरूप एश्युलन उपकरण निचले स्तरों से मिले हैं। सन 1973 से 1976 के बीच में दक्कन कॉलेज पुणे के पुरातत्व विभाग के V.N. मिश्र ने भीम बैठका में शिलाश्रय संख्या 3rd F23 का उत्खनन कराया। इस शिलाश्रय का निकास दक्षिण दिशा में है। शिलाश्रय के अंदर लगभग 52 वर्ग मीटर में उत्खनन कराया गया, जिसमें 3.80 मीटर मोटा जमाव प्रकाश में आया है, जिसको 8 स्तरों लेयर्स में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाणिक एश्युलन उपकरण इनमें से सबसे निचले 3 स्तरों 6 से 8 से मिले हैं, जिनका कुल जमा 2.50 मीटर है। पांचवें स्तर से मध्य पुरापाषाणिक और चौथे स्तर से उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण एवं अन्य पुरावशेष मिले हैं। तृतीय से प्रथम स्तर मध्य पाषाण काल की संस्कृति से संबंधित है। इन स्तरों से मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरण तथा मानव कंकाल मिले हैं। भीम बैठका के उत्खनन का विशेष महत्व यह है कि यहाँ पर पर्वती एस्युलन लेट एस्युलन ने एस्युलन से लेकर मध्य पाषाण काल तक का एक अविच्छिन्न सांस्कृतिक क्रम प्रकाश में आया है। भीम बैठका के एस्युलन जमाव से कुछ 18,721 उपकरण प्राप्त हुए हैं। लगभग 68% अपशिष्ट उत्पाद अथवा छिजन वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड है और केवल 32% गणित उपकरण सेव्ड टूल्स हैं। उपकरणों के निर्माण के लिए दो प्रकार के क्वार्जाइट पर बने हैं। फलक उपकरण हल्के पीले रंग के क्वार्जाइट पर निर्मित हैं। भीम बैठका के अवशिष्ट उत्पाद में फलक छोटे छोटे टुकड़े चिप्स तथा क्रोट सम्मिलित हैं, जिनमें से कुछ क्रोट तो लगभग 10 किग्रा पृष्ठ संख्या 240 वजन के हैं, जबकि अन्य लेवावा चक्राव क्रोट डिस्कॉइड कोर्स हल्के वजन एवं छोटे आकार के हैं। फलकों के गढ़ने के लिए हल्के हथौड़े की तकनीक सॉफ्ट हमर टेक्निक का प्रयोग किया गया है। हैंड एक्स क्लीवर उभयपक्षी उपकरणों विफेसेस की संख्या गणित उपकरणों में से अत्यंत कम 1.65% है। हैंड एक्स की संख्या 0.05% की तुलना में क्लीवर 1.15% लगभग 2 गुने हैं। सभी क्लीवर तथा अधिकांश हैंड एक्स फलकों पर बने हुए हैं। अन्य उपकरणों में पार्श्व स्क्रेपर 40.26%, स्क्रेपर 8.45, द्विदंतुरित उपकरण 5.21%, चाकू 4%, खांचेदार उपकरण नोच्ड 11.06%, खात युक्त फलक ट्रैंकेट फ्लेक्स 9.16% उल्लेखनीय है। क्लीवरों की टूटी हुई धार, टूटे क्लीवर आदि इस बात के प्रतीक है कि इनका काटने फाड़ने में प्रयोग शिलाश्रय के आसपास ही हुआ रहा होगा। एस्युलन जमाव के विभिन्न स्तरों पर छोटे छोटे पत्थरों से गज किए हुए फर्श स्टोन पेव्ड फ्लोर्स मिले हैं, जो आवास स्थल का संकेत करते हैं। इस प्रकार भीम बैठका के उत्खनन से गुफा एवं शिलाश्रयों में एस्युलन मानव के रहने कार्य करने आदि के विषय में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हुई है। विंध्य क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों की घाटियों के जलोढ़ जमावों में दबे हुए एस्युलन उपकरणों का मिलना एक सामान्य बात है। नर्मदा, सोन, बेलन, टोंस, केन, सिबिना, सोनार आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें से नर्मदा, सोन तथा बेलन नदियों के भूतात्विक जमावों, जीवाश्मों तथा पुरापाषाणिक उपकरणों का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पड़ने वाली मैकाल पहाड़ियों पर स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश एवं गुजरात में लगभग 1280 किमी का रास्ता पार करके अरब सागर में गिरती है। प्रागैतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से नरसिंहपुर और होशंगाबाद के बीच का क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण है। नर्मदा घाटी के अन्य क्षेत्र भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। नर्मदा एवं उसकी अनेक सहायक नदियों की घाटियों में पर्याप्त संख्या में पाषाण उपकरण और पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नामक पुरास्थल से मानव की एक खोपड़ी स्कल का जीवाश्म मिला है। कतिपय विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य इसे विकसित होमो सेपियंस बतलाते हैं। नर्मदा घाटी के भूतात्विक जमावों, पशुओं के जीवाश्मों तथा प्रस्तर उपकरणों का अनेक विद्वानों ने समय समय पर अध्ययन किया है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि जिन विद्वानों ने नर्मदा घाटी के भूतात्विक जमावों का पुरातात्विक दृष्टि से अध्ययन किया है, उनके निष्कर्ष एक दूसरे से नितांत भिन्न है। पृष्ठ संख्या 241, रेखा चित्र 12, नर्मदा नदी भूतात्विक जमावों की रूपरेखा। येल कैम्ब्रिज अभियान दल के देतेरा तथा पीटरसन ने सन 1935 में नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद के बीच स्थित नर्मदा घाटी के भूतात्विक जमावों का अध्ययन किया। मध्य नर्मदा घाटी के जलोढ़ जमाव को 3 इकाइयों में विभाजित किया गया। प्रत्येक वर्ग के 2-2 उपवर्ग हैं, एक निचला वर्ग लोअर ग्रुप, 2 उच्च वर्ग अपर ग्रुप, 3 कपास वाली मिट्टी का वर्ग कॉटन सॉयल ग्रुप। दतेरा तथा पीटरसन के अनुसार निचले वर्ग के जमाव में नीचे आधारभूत ग्रेवल तथा उसके ऊपर गुलाबी रंग की कंकड़ युक्त मिट्टी का जमाव है। निचले वर्ग के आधारभूत ग्रेवल से एवी विलन तथा एशुलन हैंडेक्स लीवर क्रूड तथा फलक प्राप्त हुए थे। इनके अलावा प्रारंभिक सोहन प्रकार के बड़े आकार वाले फलक, टेबल उपकरण, स्क्रेपर, प्रोटो हैंडेक्स, क्रूड आदि मिले थे। आधारभूत ग्रेवल के ऊपर के कंकड़ युक्त मिट्टी के जमाव से परवर्ती एशुलन उपकरण हुए थे। निचले वर्ग विशेषकर आधारभूत ग्रेवल से पशुओं के बहुसंख्यक जीवाश्म मिले थे, जिनमें गाय, बैल, सुअर, हाथी, घोड़ा आदि पशु मुख्य हैं। निचले वर्ग में बॉस नमदीकस, सुस नमदीकस, एलिफस हिसुड्रिकस, इक्वस नमदीकस, हेक्सा प्रोटोडान नमदीकस आदि पशुओं के जीवाश्मों की पहचान की गई है। इन पशुओं के जीवाश्मों को नमदीकस इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके जीवाश्म सर्वप्रथम नर्मदा नदी के से प्राप्त हुए थे। निचले वर्ग के जमायों से प्राप्त जीवाश्मों का कालानुक्रम मध्य प्रातिनूतन काल निर्धारित किया गया है। निचला वर्ग ऊपरी वर्ग के जमायों से एक असादृश्य अथवा विषम विन्यास के द्वारा अलग है। नर्मदा के तीनों भूतात्विक जमावों में 2-2 स्तर हैं। निचले वर्ग के ही समान ऊपरी वर्ग में 2 भिन्न प्रकार के जमाव हैं। ऊपरी पृष्ठ संख्या 242 वर्ग में आधार पर अपेक्षाकृत असंहत लूज ग्रेवल तथा बालू का जमाव है, जिसके ऊपर गुलाबी रंग के जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। इन दोनों स्तरों में अंत सोहन, लेट सोहन प्रकार के पाषाण उपकरण आदि हैं, जिनमें फलक, चक्रिक उपकरण, डिस्क्वाइट्स तथा पेबल क्रोड उल्लेखनीय हैं। इस वर्ग में जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, इनमें इक्वस नमदीकस, बॉस नमदीकस, हेक्सा प्रोटोडन, पेली इंडिकस, एलिफस हिसुड्रिकस, स्टेगोडन इंगिनी, इंसी गणेश, स्टेगोडन गणेशा तथा सर्वस आदि उल्लेखनीय है। इन जीवाश्मों को उच्च प्रातिनूतन काल से संबंधित किया जाता है। ऊपरी वर्ग तथा कपासी काली मिट्टी के जमाव के बीच में अंतराल है। कपास वाली मिट्टी के वर्ग में महीन ग्रेवल, फाइन ग्रेवल, बालू तथा काली जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सिल्ट ये 2 स्तर हैं। ग्रेवल तथा बालू के जमाव से फलक तथा ब्लेड पर बने पाषाण उपकरण मिले हैं, जिनमें स्क्रेपरों की बहुलता थी। उपकरण निर्माण के लिए चालसेडनी, जैस्पर तथा फ्लिंट पत्थरों का उपयोग किया गया था। इनको आद्य नवपाषाणिक प्रोटो नियोलिथिक कहा गया था। इस वर्ग के उपकरणों को मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा जा सकता है। दतेरा तथा पीटरसन का यह पुरातात्विक क्रम शिवालिक पहाड़ियों के पोतवा क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए अनुसंधान से प्रभावित था। नर्मदा घाटी के पुरापाषाणिक उपकरणों का एशुलन तथा सोहन परंपराओं में किया गया वर्गीकरण बहुत कम पुराविदों को अब मान्य है। एपी खत्री ने भिन्न भूतात्विक एवं पुरातात्विक क्रम नर्मदा के प्रातिनूतन काल के जमावों के विषय में प्रस्तावित किया है। कंकड़ युक्त गुलाबी रंग की मिट्टी के जमाव को बोल्डर कांग्लोमरेट ग्रेवल जमाव से प्राचीन बतलाया है। ग्रेवल से ओल्डुआ प्रकार के जो पेबल उपकरण प्राप्त हुए थे, इनको महादेवियन नाम इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि इस प्रकार के उपकरण नर्मदा घाटी में स्थित महादेव पिपरिया नामक पुरास्थल से सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। एस जी सुपेकर ने महादेव पिपरिया के जमावों का जब उत्खनन किया, तब केवल प्रारंभिक एशुलन उपकरण मिलते हैं। और ऊपरी जमा के आधार पर परवर्ती एसुलन उपकरण प्राप्त हुए। अन्य विद्वानों ने नर्मदा घाटी के भूतात्विक जमाओं को अध्ययन किया। उनसे यह ज्ञात हुआ है कि नर्मदा के निचले जमाव में प्रारंभिक एसुलन उपकरण मिलते हैं और ऊपरी जमाव में आधार पर परवर्ती एसुलन उपकरण तथा ऊपरी स्तर में मध्य पुरापाषाणिक एवं उच्च पुरापाषाणिक उपकरण मिलते हैं। मध्य नर्मदा घाटी का भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अभी हाल में जो सर्वेक्षण किया है उसके आधार पर 4 भूतात्विक जमाव प्रकाश में आए हैं, जिसके नाम नीचे से ऊपर को इस प्रकार हैं। पृष्ठ संख्या 243, 1 शोभापुर जमाव, 2 नरसिंहपुर जमाव, 3 देवा कछार जमाव, 4 झलोन जमाव। इस वर्गीकरण के विषय में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि मध्य नर्मदा घाटी के झलोन जमाव में पावला घाट तथा गुरुवारा नामक स्थानों के मध्य ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई राख का जमाव मिला है। राख का यह जमाव 24 से 40 सेमी मोटा है। मध्य सोन घाटी के जमाव की तुलना में पतला है तथा इसका विस्तार क्षेत्र भी अपेक्षाकृत सीमित है। हथनोरा नामक पूरा स्थल नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। 5 दिसंबर सन 1982 में मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को मिला है। जिस जमाव में यह खोपड़ी मिली है उसी से स्टेगोडन गणेशा तथा एलिफस हिसुडिक्रिकस नामक हथियों के जीवाश्म मिले हैं। जिस जमाव से मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है उसका कालानुक्रम मध्य प्रातिनूतन काल माना जा सकता है। इन्हीं स्तरों से निम्न पुरापाषाणिक एस्युलन हैंडेक्स और क्लीवर आदि उपकरण मिले हैं। इसके ऊपर लगभग 15 मीटर मोटा गुलाबी तथा पीले रंग की मिट्टी का जो जमाव है उससे भी निम्न पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस मानव कपाल को होमो एरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसका कपाल अपेक्षाकृत बड़ा है, सममितार्धी मुड़ सीधा है। कपाल गुहा का मान 1155 से 1421 सीसी के बीच में है। इस प्रकार इसमें एक विकसित इवॉल्व्ड होमो एरेक्टस मानव की अनेक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। इस मानव जीवाश्म का महत्व यह है कि यह भारत में अभी तक ज्ञात मानव अवशेष का सबसे प्राचीन नमूना है। यह एक निश्चित भूतात्विक जमाव में स्वस्थाने इन सीटू गड़ा हुआ मिला है। इसके साथ निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण तथा पशुओं के जीवाश्म मिले हैं, इसलिए इसकी स्थिति का निर्धारण अपेक्षाकृत निश्चित रूप से करना संभव है। मध्य नर्मदा घाटी में समनापुर एवं देवा कछार अत्यंत महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जहां पर दक्कन कॉलेज की ओर से अनुसंधान कार्य चल रहा है। मध्य सोन घाटी का भारत के भूतात्विक एवं पुरातात्विक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। सोन एक पहाड़ी नदी है जो अमरकंटक के पास से निकलती है। लगभग 485 किमी तक कैमूर की पहाड़ियों के कगार के साथ साथ बहती है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई हेडरी आन सोन नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। पृष्ठ संख्या 244। निसार अहमद ने सन 1966 में ऊपरी सोन घाटी का अन्वेषण किया तथा 35 पुरास्थलों से 167 उपकरण प्रतिवेदित किए थे। कुछ समय बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग ने जी आर शर्मा के निर्देशन में सन 1975 से 1977 के बीच में मध्य सोन घाटी का विस्तृत सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल प्रातिनूतन काल के भूतात्विक जमाव अपितु पाषाण काल के विभिन्न चरणों से संबंधित 300 से अधिक पुरास्थल भी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में प्रकाश में आए हैं। मध्य सोन घाटी के भूतात्विक जमाव में पशुओं के बहुसंख्यक जीवाश्म भी मिले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित बर्कले विश्वविद्यालय के नृतत्व विभाग के प्रागितिहासविदों द्वारा जिया शर्मा एवं जेडी क्लार्क के संयुक्त निर्देशन में सन 1980 से 82 के बीच पश्चिम में चुरहट से लेकर पूर्व में गोपत सोन के संगम के समीप स्थित बघौर तक मध्य सोन घाटी का भूतात्विक तथा पुरातात्विक विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मैक्वायर विश्वविद्यालय के मार्टिन विलियम्स तथा न्यूजीलैंड की कीथ रायस के अनुसार मध्य सोन घाटी के भूतात्विक अनुसंधान के फलस्वरूप आधारशिला के ऊपर जो जमाव प्रकाश में आए हैं उन्हें चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऊपरी वर्ग तथा कपासी काली मिट्टी के जमाव के बीच में अंतराल है। कपास वाली मिट्टी के वर्ग में महीन ग्रेवल बालू तथा काली जलोढ़ मिट्टी के ये दो स्तर हैं। ग्रेवल तथा बालू के जमाव से फलक तथा ब्लेड पर बने पाषाण उपकरण मिले जिनमें स्क्रेपरों की बहुलता थी। उपकरण निर्माण के लिए चार्ल सेडनी जैस्पर तथा फ्लिंट पत्थरों का उपयोग किया गया था। इनको आद्य नवपाषाणिक प्रोटो नियोलिथिक कहा गया था। इस वर्ग के उपकरणों को मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा जा सकता है। दतेरा तथा पीटरसन का यह पुरातात्विक क्रम शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए अनुसंधान से प्रभावित था। नर्मदा घाटी के पुरापाषाणिक उपकरणों का ऐश्चुलन तथा सोहन परंपराओं में किया गया वर्गीकरण बहुत कम पुराविदों को जो अब मान्य है। एपी खत्री ने भिन्न भूतात्विक एवं पुरातात्विक क्रम नर्मदा के प्राचीनतम काल के जमावों के विषय में प्रस्तावित किया है। कंकड़ युक्त गुलाबी रंग की मिट्टी के जमाव को बोल्डर कांग्लोमरेट ग्रेवल जमाव से प्राचीन बतलाया है। ग्रेवल से ओल्डुआ प्रकार के जो पेबल उपकरण प्राप्त हुए थे उनको महादेवियन नाम इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि इस प्रकार के उपकरण नर्मदा में स्थित महादेव पिपरिया नामक पुरास्थल से सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। एसजी सुपेरकर महादेव पिपरिया नामक पुरास्थल से सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। एसजी सुपेरकर ने महादेव पिपरिया के जमावों का जब उत्खनन किया तब केवल प्रारंभिक एश्युलन उपकरण मिलते हैं और ऊपरी जमाव के आधार पर परवर्ती एश्युलन उपकरण प्राप्त हुए। अन्य विद्वानों ने नर्मदा घाटी के भूतात्विक जमावों को अध्ययन किया है। उनमें यह ज्ञात हुआ है कि नर्मदा के निचले भाग में प्रारंभिक एश्युलन उपकरण मिलते हैं और ऊपरी भाग जमाव में आधार पर परिवर्ती एश्युलन उपकरण तथा ऊपरी स्तरों में मध्य पुरापाषाणिक एवं उच्च पुरापाषाणिक उपकरण मिलते हैं। मध्य नर्मदा घाटी का भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अभी हाल में जो सर्वेक्षण किया है उसके आधार पर चार भूतात्विक जमाव प्रकाश में आए हैं जिसके नाम नीचे से ऊपर को इस प्रकार हैं। शोभापुर जमाव, नरसिंहपुर जमा, देवा कछार जमा, झलून जमा। इस वर्गीकरण के विषय में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि मध्य नर्मदा घाटी के झलून जमाव में पावला घाट तथा गुरुवारा नामक स्थानों के मध्य ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई राख का जमाव मिला है। राख का यह जमाव 24 से 40 सेमी मोटा है। मध्य सोन घाटी के जमाव की तुलना में पतला है तथा इसका विस्तार क्षेत्र भी अपेक्षाकृत सीमित है। हथनोरा नामक पुरास्थल नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। 5 दिसंबर सन 1982 में मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को मिला है। जिस जमाव से यह खोपड़ी मिली है उसी से स्टेगोडन गणेशा तथा एलिफस हिसुड्रिकस नामक हाथियों के जीवाश्म मिले हैं। जिस जमाव से मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उसका कालानुक्रम मध्य प्राचीनतम काल माना जा सकता है। इन्हीं स्तरों से निम्न पुरापाषाणिक एश्युलन हैंडएक्स और क्लीवर आदि उपकरण मिले हैं। इसके ऊपर लगभग 15 मीटर मोटा गुलाबी तथा पीले रंग की मिट्टी का जो जमाव है उससे भी निम्न पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस मानव कपाल को होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसका कपाल अपेक्षाकृत बड़ा है, सममितार्धी मोड़ सीधा है। कपाल गुहा का मान 1155 से 1421 ईसी के बीच में है। इस प्रकार इसमें एक विकसित इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस मानव की अनेक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। इस मानव जीवाश्म का महत्व यह है कि यह भारत में अभी तक ज्ञात मानव अवशेष का सबसे प्राचीन नमूना है। यह एक निश्चित भूतात्विक जमाव में स्वस्थाने गड़ा हुआ है। इसके साथ निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण तथा पशुओं के जीवाश्म मिले हैं, इसलिए इसकी तिथि का निर्धारण अपेक्षाकृत निश्चित रूप से करना संभव है। मध्य नर्मदा घाटी में समनापुर एवं देवा कछार अत्यंत महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जहाँ पर दक्कन कॉलेज की ओर से अनुसंधान कार्य चल रहा है। मध्य सोन घाटी का भारत के भूतात्विक एवं पुरातात्विक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। सोन एक पहाड़ी नदी है जो अमरकंटक के पास से निकलती है। लगभग 485 किमी तक कैमूर की पहाड़ियों के कगार के साथ साथ बहती है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई डेहरी आन सोन नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। पृष्ठ संख्या 244। निसार अहमद ने सन 1960 में ऊपरी सोन घाटी का अन्वेषण किया था। 35 पुरास्थलों से 167 उपकरण प्रतिवेदित किए थे। कुछ समय बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग ने जी आर शर्मा के निर्देशन में सन 1975 से 1977 के बीच में मध्य सोन घाटी का विस्तृत सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल प्राचीनतम काल के भूतात्विक जमाव अपितु पाषाण काल से विभिन्न चरणों से संबंधित 300 से अधिक पुरास्थल भी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में प्रकाश में आए हैं। मध्य सोन घाटी के भूतात्विक जमावों में पशुओं के बहुसंख्यक जीवाश्म भी मिले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित बर्कले विश्वविद्यालय के नेतृत्व विभाग के प्रागितिहासविदों द्वारा जी आर शर्मा एवं जे डी क्लार्क के संयुक्त निर्देशन में सन 1980 से 1982 के बीच पश्चिम में चुरहट से लेकर पूर्व में गोपत सोन के संगम के समीप स्थित बघौर तक मध्य सोन घाटी का भूतात्विक तथा पुरातात्विक विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मैक्वायर विश्वविद्यालय के मार्टिन विलियम तथा न्यूजीलैंड के कीथ रायस के अनुसार मध्य सोन घाटी के भूतात्विक अनुसंधान के फलस्वरूप आधारशिला के ऊपर जो जमाव प्रकाश में आए उन्हें चार भागों में विभाजित किया गया है। एक सिहावल जमाव, दो पटपारा जमाव, तीन बाघोर जमाव, चार खेतौही जमाव। सिहावल सोन नदी के सबसे निचले एवं पुराने जमाव को सिहावल जमाव इसलिए कहा गया है क्योंकि सिहावल नामक पुरास्थल के पास इसका सबसे अच्छा जमाव है जहां इसका अध्ययन किया गया है। इस जमाव की मोटाई 1.50 मीटर है जो चट्टान के ऊपर दिखती है। इस जमाव में कहीं कहीं बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट तथा शेल के नुकीली छोटे टुकड़े मिलते हैं जो बालू के महीन कण के आकार से लेकर 50 सेमी तक के हैं। ये मिट्टी में चिपके हुए मिलते हैं। इसमें कहीं कहीं पर 50 सेमी मोटी चितकबरी मिट्टी का जमाव मिलता है जिसमें बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट एवं शेल के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। इस जमाव का निर्माण अर्धशुष्क से लेकर मध्यम आर्द्र जलवायु के समय में हुआ। ग्रेवल जमाव अर्धशुष्क चरण में तथा मिट्टी का जमाव आर्द्र जलवायु के काल में हुआ। इसमें एस्ट्रेलियन परंपरा के हैंडएक्स, क्लीवर, स्क्रेपर आदि मिले हैं। इन उपकरणों के ऊपर कुछ क्षेत्रों में घिसने पिटने के लक्षण भी मिलते हैं, लेकिन अधिकांश उपकरण नवीन दृष्टिगोचर होते हैं। सिहावल जमाव की ऊष्मा दीप्ति विधि से अभी तक एक तिथि ज्ञात है जो 103,800 प्लस माइनस 19,800 बीपी है। सिहावल जमाव बहुत दिनों तक खुला पड़ा रहा, अतएव इसके ऊपर क्षरण की प्रक्रिया क्रियाशील रही। पृष्ठ संख्या 245, रेखाचित्र 13, सोन नदी भूतात्विक जमाव की रूपरेखा, विलियम एवं कीथ रायस 1983 के अनुसार। पटपरा जमाव मध्य सोन घाटी का दूसरा जमाव पटपरा के नाम से जाना जाता है। इसका अध्ययन सीधी जिले के पटपरा नामक पुरास्थल पर संपन्न हुआ। जगह जगह पर यह जमाव 10 मीटर मोटा है तथा सिहावल जमाव के ऊपर विषम विन्यास के साथ यह दृष्टिगोचर होता है, लेकिन इन दोनों जमाव को देखने से ऐसा लगता है कि इन इनके बीच में समय का लंबा व्यवधान रहा होगा। पटपरा जमाव मुख्य रूप से अपने लाल रंग के कारण पहचाना जाता है। इसमें बालू के कण तथा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, क्वार्ट्ज बलुआ पत्थर, शेल और क्वार्टजाइट पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। यह जमाव काफी सीमा तक लोहयुक्त टुकड़ों से भरा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका रंग गहरा लाल दिखलाई पड़ता है। इस जमाव के अंदर अगेट, चालसेडनी आदि पत्थरों के टुकड़े घिसी पेटी अवस्था में मिलते हैं। पटपरा जमाव उस समय हुआ जब सोन नदी का बहाव तीव्र गति पर था। सोन नदी की निक्षेप क्रिया के परिणाम स्वरूप इस जमाव का निर्माण हुआ है। पटपरा जमाव के ऊपर गहरी लाल भूरी मिट्टी का जमाव दिखलाई देता है, जिसकी मोटाई 1 मीटर से लगभग है। अनेक स्थानों पर इसका ऊपरी जमाव कट छट गया है। पटपरा जमाव से मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण नवनिर्मित अवस्था में मिलते हैं, जिन पर घिसने पिटने के लक्षण नहीं दिखलाई देते हैं। इस जमाव में हैंडएक्स, क्लीवर आदि उभयपक्षी उपकरण मिलते हैं, जिससे यह इंगित होता है कि एस्युलन परंपरा उच्च प्रातिनूतन काल के प्रारंभिक चरण तक चलती रही। पृष्ठ संख्या 246। बाघौर जमाव मध्य सोन घाटी का सबसे विशिष्ट जमाव है, जिसकी मोटाई 20 मीटर के लगभग है। परंपरा तथा बाघौर जमाव के बीच की समय का वैसा ही अंतराल है जैसा कि सिहावल और पटपरा के बीच में है। बाघौर जमाव को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक रुक्ष वर्ग, दो महीन वर्ग। बाघौर का निचला जमाव मोटी बालू का है, इसलिए इसको रुक्ष वर्ग के जमाव की संज्ञा दी गई है। यह जमाव 5 सेमी से 6 मीटर मोटा है। इसमें क्वार्टजाइट, सेल, क्वार्ज, चालसेडनी, अगेट तथा चट के टुकड़े मिलते हैं, जो मोटी बालू के आकार से लेकर पत्थर के छोटे टुकड़ों के आकार के हैं। कुछ स्थानों पर इस उपजमाव के ऊपर बालू तथा मिट्टी का पतला संस्तरित जमाव मिला है। मध्य सोन घाटी में ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई राख का जमाव मिला है। यह जमाव बाघौर जमाव के रुक्ष वर्ग के ऊपरी स्तर से मिला है। मार्टिन विलियम्स तथा एम क्लार्क ने इस जमाव की ओर सर्वप्रथम विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद ही महाराष्ट्र में बोरी के जमाव की खोज हुई। मध्य सोन घाटी में घोघर से खेतौही नामक स्थान पर लगभग 30 वर्ग किमी के क्षेत्र में यह जमाव फैला हुआ मिला है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के पीके बसु एस विश्वास तथा पीके आचार्य के अनुसार यह जमाव सुमात्रा के तोबा नामक ज्वालामुखी पर्वत के उद्गार से निकली हुई नवीनतम तोबा राग के जमाव से संबंधित है। यंगेस्ट तोबा आस डिपॉजिट पोटेशियम कार्बन तिथि विधि से इसकी तिथि 74,000 प्लस माइनस 20,000 बीपी है, जो साक्ष्य उपलब्ध है। इसके अनुसार सुमात्रा में 3 बार ज्वालामुखी का उद्गार समय समय पर हुआ था। इस जमाव का संबंध तीसरे तथा नवीनतम जमाव से है। बाघौर का महीन वर्ग रुक्ष वर्ग के जमाव के ऊपर मिलता है। यह लगभग 10 मीटर मोटा जमाव है, जो अपेक्षाकृत महीन जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस पूरे जमाव में कंकड़ मिलते हैं, किंतु ज्यो-ज्यो ऊपर बढ़ते जाते हैं कंकड़ की संख्या बढ़ती जाती है। बाघौर जमाव के निचले स्तरों से मध्य पुरापाषाण काल के घिसे हुए उपकरण मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपकरण इसके बहुत पहले अस्तित्व में आ चुके थे। जमाव की प्रक्रिया में लंबी यात्रा तय करके उपकरण उसके अंग बने हैं, इसलिए इन उपकरणों को इस जमाव का समसामयिक न कहकर उससे बहुत पहले का कहना ही उचित होगा। बाघौर जमाव के महीन वर्ग वाले ऊपरी स्तरों से उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं, जो नवीन फ्रेश स्थिति में है। यह कहा जा सकता है कि इस जमाव के अंतिम क्षणों में उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति अस्तित्व में आ चुकी थी। पृष्ठ संख्या 247। बाघौर जमाव के विभिन्न स्तरों से कुछ बहुत बड़ी संख्या में पशुओं के जीवाश्म मिले हैं। इन जीवाश्मों में बैल, गौर, दरियाई घोड़ा, घोड़ा, गैंडा, हाथी, तरह तरह के हिरण, घड़ियाल तथा कछुआ के जीवाश्म उल्लेखनीय है। चित्र 14 सोन नदी, घड़ियाल एवं बैल का जीवाश्म। खेतौही जमाव मध्य सोन घाटी का सबसे नया जमाव है। इस जमाव का सम्यक अध्ययन सोन और रेही के संगम के 1 किमी ऊपर सोन के दाहिने तट पर स्थित खेतौही नामक पुरास्थल पर किया गया है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। यह जमाव 10 मीटर मोटा है तथा सोन नदी के वर्तमान जलस्तर से मात्र 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जमाव जलोढ़ मिट्टी तथा सिल्ट से निर्मित है, जिसमें यदाकदा महीन बालू मिलती है। इस जमाव का निर्माण मध्यम आर्द्र सब हमीट जलवायु के काल में हुआ। इस जमाव से मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। मध्य सोन घाटी के विभिन्न जमावों का कालानुक्रम निर्धारित करने का भी प्रयास किया गया है। अनुमानतः सिहावल जमाव मध्य प्रातिनूतन काल से संबंधित है तथा इसे 1 लाख वर्ष से अधिक पुराना समझा जा सकता है। पटपरा जमाव पृष्ठ संख्या 248 उच्च प्रातिनूतन काल से संबंधित माना गया है। इसका समय 1 लाख से 30 हजार वर्ष पहले तक समझा जाता है। बागौर जमाव के रुक्ष वर्ग का समय 30 हजार वर्ष से 12 हजार वर्ष पहले तक निर्धारित किया गया है। महीन वर्ग की कहानी 12 हजार वर्ष पहले शुरू हुई होती है। खेतौही जमाव का समय नूतन काल होलोसेंस माना जाता है, अर्थात इसकी तिथि लगभग 10 हजार वर्ष अनुमानित की गई है। इस तिथि क्रम में संशोधन की आवश्यकता है। मध्य सोन घाटी में हुए पुरातात्विक अन्वेषण के फलस्वरूप पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल से संबंधित अनेक पुरास्थल प्रकाश में आए हैं। पुरापाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल की संस्कृतियां अपने भूतात्विक परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती हैं। निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित 30 से अधिक पुरास्थल अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। मध्य सोन घाटी के सिहावल जमाव से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल से संबंधित प्रमुख उत्खनित पुरास्थलों में सिहावल, नकझर, खुद तथा पटपरा प्रमुख है। मध्य सोन घाटी में निम्न पुरापाषाणिक पुरास्थल सोन नदी के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ मिले हैं, लेकिन बहुसंख्यक पुरास्थल नदी के उत्तर में ही है। नदी के उत्तर में छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला नदी के समानांतर है। कहीं कहीं यह श्रृंखला जमीन की सतह से ऊपर दिखती है, जो तो कहीं कहीं जमीन के अंदर चली गई प्रतीत होती है। निम्न पुरापाषाण काल के पुरास्थलों में हैंड एक्स, हस्तकुठार, क्लीवर, विदारक, स्क्रेपर, खुरचुनी, नुकीले हैंड एक्स मिले हैं। किसी भी पुरास्थल से पेबल उपकरण नहीं मिले हैं। उपकरणों के निर्माण के लिए क्वार्जाइट चर्ट तथा यदाकदा क्वार्ज का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार पत्थरों के चयन में विविधता मिलती है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि सोन की तलहटी में चर्ट के शैल खंड बड़ी संख्या में मिलते हैं। क्वार्ज पर बने 2 हस्तकुठार प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के निर्माण में तकनीकी दक्षता एवं पटिता का परिचय इनके निर्माताओं ने दिया है। फलक निकालने के लिए बेलना का हथौड़े के प्रयोग के संकेत छिछले फलक के निशान के रूप में मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 249 मध्य सोन घाटी के बहुत से पुरास्थल से मध्य पुरापाषाण काल के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति से संबंधित अनेक कार्यस्थल मिले हैं। सोन नदी के पटपरा जमा से भी इस तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरणों में तरह तरह के स्क्रेपर, पॉइंट, छिद्रक एवं ब्लेड उल्लेखनीय है। उपकरण निर्माण के लिए क्वार्जाइट एवं चर्ट जैसे पत्थरों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि मध्य सोन घाटी में अनेक पुरास्थलों पर पटपरा जमाव से हस्तकुठार एवं विदारक प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह पता चलता है कि मध्य पुरापाषाण काल में इस प्रकार के उपकरण अत्यल्प संख्या में प्रयुक्त होते हैं। नकझर, खुर्द तथा पटपरा के उत्खनन से मध्य पुरापाषाणिक उपकरणों का भी एक स्तर मिला है। मध्य सोन घाटी से अभी तक लगभग 70 से अधिक उच्च पुरापाषाणिक पुरास्थल प्रकाश में आ चुके हैं। बागौर जमाव के महीन वर्ग से इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य सोन घाटी में कैमूर की तलहटी को उच्च पुरापाषाण काल के मानव ने अपने कार्यस्थलों के लिए चुना है। इससे यह संकेत मिलता है कि मानव का कार्य क्षेत्र विस्तृत हो रहा था। उच्च पुरापाषाण काल के कतिपय पुरास्थलों का उत्खनन भी किया गया है, जिनमें बाघौर प्रथम, बाघौर द्वितीय तथा रामपुर उल्लेखनीय है। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण इन उपयुक्त स्थलों पर भूतात्विक जमावों से मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरणों में पॉइंट, खुचनी, चांद्रिक तथा ब्लेड आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ब्लेड पर बने उपकरण अधिक हैं। फलक पर भी अनेक उपकरण बने हैं। क्रोट से ब्लेड निकालने के लिए निपीट तकनीक का प्रयोग किया गया है। उपकरणों के कार्यांग को तेज करने के लिए पुनर्गढ़ के भी साक्ष्य मिलते हैं। अधिकांश उपकरण चर्ट पर बने हुए हैं। मध्य सोन घाटी से उच्च पुरापाषाणिक मानव के धार्मिक आचार विचार के विषय में भी कुछ संकेत मिले हैं। बाघौर प्रथम से उपकरणों के धरातल के नीचे बलुआ पत्थर का एक ढेर मिला, जिसके मध्य में एक विशेष प्रकार के पत्थर के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए, जिनको आपस में जोड़ने पर उनमें प्राकृतिक रूप से बनी हुई त्रिभुजाकार सफेद आकृतियां दृष्टिगत हुई। आसपास के क्षेत्रों में अब भी इस प्रकार के पत्थरों को दैवी शक्ति का प्रतीक मानकर पूजने की परंपरा है। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः उच्च पुरापाषाण काल के मानव के मन में भी इन प्रस्तर खंडों के संदर्भ में ऐसी ही धारणा रही हो। मध्य सोन घाटी के आंचल में स्थित अनेक क्षेत्रों में अभी भी जनजातियों निवास करती हैं। आधुनिक सभ्यता का प्रकाश इस क्षेत्र में अब फैल रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में यदि अत्यंत प्राचीन धार्मिक विचार जीवित दिखलाई पड़े तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पृष्ठ संख्या 250। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने स्वर्गीय जिया शर्मा के निर्देशन में भूतात्विक और पुरातात्विक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण किया है, जिसके फलस्वरूप पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल से संबंधित अनेक पुरास्थल प्रकाश में आए। पाषाण काल के पुरावशेषों के अतिरिक्त पशुओं के जीवाश्म बेलन और उसकी सहायक नदियों के अनुभागों में मिले हैं। इस प्रकार पाषाण काल की संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से भारतीय प्रागैतिहास में बेलन घाटी का अपना विशिष्ट स्थान है। चित्र 15, बेलन नदी भूतात्विक जमा। बेलन टोन्स की सहायक नदी है, जो मिर्जापुर के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यह मिर्जापुर एवं इलाहाबाद के दक्षिणी भाग में स्थित मेजा तहसील से जल निकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बेलन नदी के अनुभागों का दक्षिण में मिर्जापुर जिले में स्थित बरौंधा नामक स्थल से लेकर उत्तर में इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बेलन टोन से संगम तक अध्ययन किया गया है। दया नामक स्थान से लेकर देवघाट तक बेलन नदी के लगभग 18 मीटर ऊंचे नदी के अनुभाग मिलते हैं, जो कहीं कहीं पर 21 मीटर तक ऊंचे हैं। इस क्षेत्र में बेलन तथा उसकी सहायक सियोटी आदि से प्राचीनतम काल के जमाव को काटकर प्रकाश में ला दिया है। पृष्ठ संख्या 251, रेखाचित्र 16, बेलन नदी भूतात्विक जमाव की रूपरेखा एसएन राजगुरु एवं जीजी मजुमदार 1667 के अनुसार। बेलन घाटी के लगभग 64 किमी क्षेत्र में पुरातात्विक अन्वेषण किया गया है और भूतात्विक जमाओं का सर्वेक्षण हुआ है। बेलन घाटी में भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों ने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुरोध पर सर्वेक्षण किया है। इन सभी अध्ययनों एवं सर्वेक्षणों के आधार पर बेलन नदी के भूतात्विक जमाओं की जो रूपरेखा ज्ञात हुई है, उसको 10 विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया है। बेलन नदी इस समय आधारभूत विंध्य आधारशिला पर प्रवाहित हो रही है। आधारशिला ऋतु अपचयन के फलस्वरूप अपघटित हो गई है। इस अपघटित शिला के ऊपर 1.52 मीटर प्रथम ग्रेवल का जमाव है। इस ग्रेवल में पेबल लेटराइट से पुते हुए पत्थरों के टुकड़े तथा अन्य छोटे एवं बड़े पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। इन पत्थरों के किनारे घिसे हुए नहीं हैं, जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इन शिलाखंडों को नदी दूर से बहाकर नहीं लाई है। प्रथम ग्रेवल का जमाव आर्द्र जलवायु में हुआ। जब बेलन नदी में जल प्रवाह अपेक्षाकृत तेज था, प्रथम ग्रेवल से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण और गाय, बैल, गौर, हाथी आदि पशुओं के जीवाश्म मिले हैं। प्रथम ग्रेवल के ऊपर लगभग 3 मीटर मोटा जलोढ़ मिट्टी सिल्ट का जमाव है। इस जमाव से पाषाण उपकरण तथा पशुओं के जीवाश्म आदि कुछ भी नहीं मिले हैं। इस मिट्टी का जमाव प्राचीनतम काल की अपेक्षा के शुष्क जलवायु के समय में हुआ। कुछ भूतत्वविद प्रथम ग्रेवल तथा सिल्ट के जमाव को एक ही जलवायु चक्र में निर्मित मानते हैं। उनके अनुसार प्रस्तर खंड, पाषाण उपकरण तथा पशुओं के जीवाश्म अधिक भारी होने के कारण नीचे प्रथम ग्रेवल के रूप में एकत्र हो गए। महीन कणों की हल्की सिल्ट मिट्टी ऊपर इकट्ठा हो गई। पृष्ठ संख्या 252। सिल्ट के ऊपर लगभग 2.74 मीटर मोटा द्वितीय ग्रेवल का जमाव है। यद्यपि द्वितीय ग्रेवल का जमाव अर्ध जलवायु में हुआ, तथापि इसमें मिलने वाले पेबल तथा प्रस्तर खंड प्रथम ग्रेवल के जमाव में मिलने वाले पेबल एवं प्रस्तर खंडों से आकार में छोटे हैं। उस समय नदी के जल प्रवाह में अपेक्षाकृत कमी हो गई। द्वितीय ग्रेवल अ व तथा स इन तीनों भागों में बटा हुआ है। द्वितीय ग्रेवल से सबसे नीचे क्लीवर तथा स्क्रेपर मिले हैं। मध्य तथा ऊपरी भाग में मध्य पुरापाषाण काल के विशिष्ट उपकरण मिले हैं। द्वितीय ग्रेवल के बीच बीच में कहीं कहीं पर जलोढ़ मिट्टी के पतले जमाव मिलते हैं, जिनसे यह इंगित होता है कि द्वितीय ग्रेवल के संपूर्ण काल में आर्द्र जलवायु नहीं थी। कभी कभी अल्पकाल के लिए शुष्क जलवायु का आविर्भाव होता था। द्वितीय ग्रेवल के ऊपर लाल रंग की जलोढ़ मिट्टी रेडिश सिल्ट का जमाव मिलता है, जिसकी मोटाई 1.25 मीटर है। इस जमाव में कंकड़, लेटराइट की गोलियां तथा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े चिप्स प्रचुर संख्या में मिलते हैं। शुष्क जलवायु में निर्मित लाल मिट्टी के इस जमाव से मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लाल मिट्टी के ऊपर 1.52 मीटर मोटा पीली डूमट मिट्टी का जमाव है। इस जमाव के निचले स्तरों से मध्य पुरापाषाण काल के स्क्रेपर ब्लेड आदि उपकरण मिलते हैं। ऊपरी स्तरों से लंबे फलक तथा उच्च पुरापाषाणिक ब्लेड भी प्राप्त होने लगते हैं। पीली दुमट मिट्टी के जमाव के ऊपर तृतीय ग्रेवल का जमाव मिलता है, जो 1.21 मीटर मोटा है। इस ग्रेवल में मोटी बालू की मात्रा अधिक है। तृतीय ग्रेवल से उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। तृतीय ग्रेवल के ऊपर मिट्टी का मोटा जमाव है, जिसे 3 इकाइयों में रूप, रंग तथा पाषाणिक उपकरणों के आधार पर विभाजित किया गया है। मटमैले रंग की मिट्टी का लगभग 1.82 मीटर मोटा जो जमाव है, उसमें कंकड़ तथा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं। इस जमाव से उच्च पुरापाषाण काल के ब्लेड तथा मध्य पाषाण काल के अज्यामितीय लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके ऊपर काली मिट्टी का जमाव है, जो 2.43 मीटर मोटा है। आर्द्र जलवायु में निर्मित होने के कारण मिट्टी का रंग काला हो गया है। इस स्तर से मध्य पाषाण काल के ज्यामितीय उपकरण प्राप्त हुए हैं। सबसे ऊपर भूरी मिट्टी का वायुजनित 4 मीटर मोटा जमाव है, जिसमें लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेलन नदी के प्रथम तथा द्वितीय ग्रेवल जमाव के बीच में मिलने वाली सिल्ट को छोड़कर शेष सभी जमावों से पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के उपकरण तथा पशुओं के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। डैया नामक स्थल से लेकर कोटिया नामक गांव तक बेलन नदी अपने प्राचीन प्रवाह पथ को छोड़कर नए मार्ग से प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 253। बेलन घाटी में किए गए सर्वेक्षण से निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति के 44 पुरास्थल प्रकाश में आए हैं। इस घाटी में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण 3 संदर्भों में प्राप्त होते हैं। 1 नदी की तलहटी, 2 प्रथम ग्रेवल के जमाव, 3 बेलन नदी के दक्षिण स्थित विंध्य पहाड़ियों के ऊपर। नदी की तलहटी तथा प्रथम ग्रेवल जमाव में हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रेपर आदि उपकरण घिसी हुई अवस्था में मिलते हैं। प्रथम ग्रेवल जमाव से पेबल पर बने हुए चौपर नामक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। चित्र 17। बेलन नदी निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण। बेलन नदी के दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियां स्थित हैं, जो बाद में कैमूर की पर्वत श्रृंखला से मिल जाती हैं। इन पहाड़ियों के ऊपर निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित अनेक पुरास्थल स्थित हैं। मुरली, महुगढ़, चांदातरी, रामगढ़वा, कोस कनगाढ़ा, बेलहरी, करौंदिया, करौदहिया आदि पहाड़ियों पर निम्न पुरापाषाण काल के पुरावशेष मिले हैं। पहाड़ियों के ऊपर तथा उनकी तलहटी में उपकरण निर्माण के लिए उपयुक्त क्वार्टजाइट पत्थर सहज सुलभ थे। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इन पुरास्थलों से तत्कालीन लोग शिकार पर सरलता से घात लगा सकते थे। इन पुरास्थलों का चयन प्रवास स्थल एवं उपकरण निर्माण स्थल के रूप में इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर किया गया रहा होगा। पूर्ण निर्मित उपकरण के अतिरिक्त पृष्ठ संख्या 254 अर्धनिर्मित उपकरण, क्रोट फलक तथा छोटे छोटे फलकों के टुकड़े इन पुरास्थलों पर बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। इसलिए इन्हें उपकरण निर्माण स्थल अथवा कार्यस्थल प्रायः कहा जाता है। हैंडक्स, क्लीवर, स्क्रेपर आदि उपकरण नवनिर्मित अवस्था में मिलते हैं। प्रारंभिक एसुलन उपकरणों से लेकर विकसित एसुलन उपकरण इन क्षेत्रों में साथ साथ मिले जुले रूप में प्राप्त हुए हैं। अनेक हैंडक्स तथा क्लीवर इस तरह से बनाए गए हैं कि उनके स्क्रेपर का भी काम लिया जा सके। इन उपकरणों की संयुक्त उपकरण कहा जा सक इन उपकरणों को संयुक्त उपकरण कंपोजिट टूल्स कहा गया है। बेलन घाटी से प्राप्त कतिपय हैंडक्स उपकरणों में मूठ लगाने की प्रावधान मिलता है। बेलन नदी की सहायक स्योटी नामक बरसाती नदी के उद्गम से लेकर स्योटी बेलन संगम तक चिपटे आकार के शिलाखंड चंग पर बने हुए हैंडक्स तथा अन्य उपकरण प्राप्त हुए। बेलन घाटी में अन्यत्र ऐसे उपकरण प्रायः नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के पत्थर के टुकड़ों पर उपकरण बनाने में कम से कम परिश्रम करके किनारे किनारे फलक निकालकर कार्यांग अथवा धार का निर्माण किया जा सकता था। निम्न पुरापाषाण काल की ही भांति बेलन घाटी में मध्य पुरापाषाण काल के बहुत से पुरास्थल प्रकाश में आए हैं। इस वर्ग के उपकरण द्वितीय ग्रेवल के जमाव तथा उसके ऊपर की लाल रंग की दुमट मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त बेलन नदी के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के उत्तरी ढलान पर मिलते हैं। अधिकांश उपकरण फलक पर बने हुए हैं। बेलनाकार हथौड़ा पद्धति से फलक निकालकर उपकरण बनाए गए हैं। स्क्रेपर, छिद्रक, ब्लेड, चक्राव आदि प्रमुख उपकरण हैं। प्रवास एवं कार्यस्थलों में बटाऊ बीर, खुटा बीर, मुड़वा तथा नाउन कला उल्लेखनीय है। उपकरणों के निर्माण के लिए यद्यपि क्वार्जाइट का प्रयोग इस काल में भी मुख्यतः होता रहा है, किंतु यह क्वार्जाइट महीन कड़वाला अपेक्षाकृत अच्छी किस्म का पत्थर है। बेलन घाटी के मध्य पुरापाषाणिक उपकरणों के साथ अभी तक कोई हैंडक्स नहीं मिला है, लेकिन द्वितीय ग्रेवल के निचले स्तरों से छोटे आकार के कुछ क्लीवर मिले हैं। बेलन घाटी में उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण तृतीय ग्रेवल तथा उसके नीचे की पीली दुमट मिट्टी से मिलते हैं। इनके अतिरिक्त तृतीय ग्रेवल के ऊपर की मटमैले रंग की मिट्टी के जमाव से भी ये उपकरण मिलते हैं। बेलन घाटी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि इस घाटी में सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति का भूतात्विक स्तर निर्विवाद रूप से स्पष्ट हुआ। बेलन के भूतात्विक जमावों के अतिरिक्त बेलन घाटी में स्थित कई प्रवास स्थलों से भी उच्च पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के उच्च पुरापाषाणिक उपकरणों में ब्लेड, ब्यूरिन, छिद्रक, चांद्रिक तथा स्क्रेपर प्रमुख हैं। ब्लेड साधारणतः लेवावा क्रोडो से निकाले गए हैं, यद्यपि नालिकाकार क्रोडो के भी साक्ष्य मिलते हैं। ब्यूरिन, छिद्रक तथा चांद्रिक सीमित पृष्ठ संख्या 255 संख्या में मिले हैं। ब्लेड के बाद सर्वाधिक संख्या स्क्रेपरों की है, जिन्हें पार्श्व स्क्रेपर, खाद स्क्रेपर, नतोदय स्क्रेपर, अंत स्क्रेपर आदि में विभाजित किया जा सकता है। बेलन घाटी से भारत के उच्च पुरापाषाणिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति पर भी प्रकाश पड़ता है। बेलन घाटी में लोहंदा नाले के तृतीय ग्रेवल के अपर्दित जमाव से हड्डी की बनी हुई माता देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। बेलन घाटी के तृतीय ग्रेवल से प्राप्त पशुओं के जीवाश्मों को उच्च प्रातिनूतन काल के से लेकर प्रारंभिक नूतन काल के बीच का बतलाया जाता है। तृतीय ग्रेवल से कुछ रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हैं, जिनसे इस संस्कृति के तिथि क्रम पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ के तृतीय ग्रेवल से रेडियो कार्बन 2 तिथियां प्राप्त है, PRL 86,22,840 प्लस माइनस 832 ईसा पूर्व तथा TF 1,24,51,000 तथा TF 12,45,17,776 प्लस माइनस 340 ईसा पूर्व। इस प्रकार बेलन घाटी में उच्च पुरापाषाण काल का कालानुक्रम 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। भारत में निम्न पुरापाषाण काल के विषय में किए गए उपयुक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि कुछ अपवादों को छोड़कर देश के अधिकांश भागों पुरापाषाण काल में मानव प्रवास के साक्ष्य मिलते हैं। पुरापाषाण काल के प्रारंभिक चरण निम्न पुरापाषाण काल के संबंध में हमारी जानकारी उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पशु जीवाश्मों के जो साक्ष्य गोदावरी, नर्मदा, सोन तथा बेलन आदि नदियों के जमाओं से मिले हैं, उनके आधार पर निम्न पुरापाषाण काल का सापेक्ष कालक्रम मध्य प्रातिनूतन काल में निर्धारित किया जा सकता है। कतिपय पुरास्थलों से प्राप्त निरपेक्ष तिथियों से भी यही इंगित होता है। निम्न पुरापाषाण काल के कतिपय प्राथमिक प्रवास स्थलों के जो उत्खनन हुए हैं, उनसे कुछ नवीन तथ्य ज्ञात हुए हैं, किंतु जैविक अवशेषों के इन पुरास्थलों से न मिलने के कारण शिकार आदि के विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। प्राथमिक प्रवास स्थलों के अन्वेषण और उत्खनन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।